अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यायुः कुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा अङ्गश्यामलिं छटा विरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जाबुद्रोचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्जलभुजं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चर गोलिटाच गुरु गौरांग की कृपा से आज हम लोग निधुवन में और निधुवन के बाद में राधा रमन दर्शन मिला कई बजे उनका तो समय रहता है 9:30 बजे वहां दर्शन हुआ राधा रमन और गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि और भजन दर्शन करके राधा गोपला आनंदी जी और वहां दर्शन करके फिर आ गए लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि में और फिर वहां से गोपीनाथ और गोपीनाथ से फिर लौट श्याम सुंदर इस बार उल्टा पुल्टा हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कल यहां से जाए और देखो बंगला नहीं हो रहा है शाम को 3-4 बजे परिव्राजक महाराज को दे कह देना तुम्हें उखाने पाठ कर रहे बंगला प्रतिदिन नहीं तो ओरा मने कर भाई जिस समय देखे कुछ बोला हो निधुस निधुवन में गए वहां पर तो भाषण दिया गया न कौन बोला बनारण्य और इनको कहीं बोलने दिया गया भक्ति सार जाए तो उनको भी, इन लोगों को भी समय देना चाहिए सबको। निधु माने सूरत, सूरत क्रीड़ा, निधुमन माने होता है सूरत क्रीड़ा। सूरत क्रीड़ा माने क्या? जो गुप्त लीलाएं हैं, रह लीला, गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों में निधु, निधुवन की सूरत क्रीड़ा का वर्णन। निशांत लीला का स्थान बतलाया जाता है राधा नंदगांव और बरसाना के बीच में, संकेत में, संकेत से मिलते हैं। यहां पर भी वही है, निशांत लीला का स्थान है, है? ये वृंदावन निधुवन, तो निशांत काल में निधुवन में केली कुंज में जुगल का शयन विलास होता है। तो इनका शयन विलास होता है। अरे माता जी को एक चेयर दे देना कहीं से ढूंढ करके, ओ ब्रह्मचारी यू कैन गिव ए चेयर टू दैट मॉडल। ठीक है, तो नैश लीला भी, निशांत लीला भी। प्रभात जब होने लगता है निशांत, उस समय वृंदा देवी सुख सारी, मयूर, कोकिल, भृंग इत्यादि को आदेश देती हैं कि राधा कृष्ण अभी सो रहे हैं, अयोध्या प्रभात हो रहा है, इसलिए जल्दी से इनको जगाओ और ये लोग अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। रागानुगु भक्त लोग विशेषकर रूपानुग रसिक महानुभाव नाम संकीर्तन के माध्यम से इन लीलाओं का स्मरण करते हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहां पर कहा गया था, ये विश्वनाथ स्वप्न विलास की बात, यह यहीं के लीला का वर्णन है कि किसी समय में यहीं पर रात के अंतिम भाग में राधा और कृष्ण जग जाने के बाद में जब उनका मिलन परस्पर हुआ तो विश्वानंदिनी जी ने एक स्वप्न देखा और कृष्ण से वो कह रही है, प्रियतम मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है, देखा है कि मैं जहां पर हूं वहां यमुना की भांति कोई नदी बह रही है, यमुना की भांति, और नदी के तट पर जमला पुलिन की भांति में वहां पर भी पुलिन है, बहुत ही सुंदर मनोहर, और उस उपवन में वृंदावन भांति, वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य और गान करते हुए, विनोद करते हुए अद्भुत गौर कांति विशिष्ट किशोर को देखा, बहुत ही सुंदर, कैसा रंग, राधा जी जैसा रंग, बहुत ही गौर वर्ण का देखा, और भावावेश में मृदंग और करताल के स्वर से वो नृत्य कर रहा था, क्या हो जाता है। भावाविष्ट किशोर कभी हा कृष्ण कर रहा था और कभी कभी भावाविष्ट होकर हे राधे हे राधे तुम कहां हो, ऐसा कर रहा था। और कभी भूमि पर लौट रहा था भाव अविष्ट होकर, कभी मूर्छित हो रहा था और कभी अपने भावों से सारे जगत को, अपने भावों को उन लोगों में संचरित कर रहा था। सभी लोग प्रभावित हो रहे थे उस प्रेम को देखकर। प्रियतम, मैंने यह देख करके स्वप्न में मैंने सोचा कि ये किशोर कौन है, क्या कभी हा कृष्ण कहने वाली मैं ही तो नहीं हूं, मैं मेरे अतिरिक्त और तो कोई हा कृष्ण कर करके रोता नहीं। अथवा जब वो हा राधे करता है तुम कहां हो, तो ऐसा लगता है कि तुम ही हो, तुम ही मेरे लिए हा राधे राधे कह करके रोते हो, या तो तुम हो। तो मैं कुछ चिंतित हो गई, ये वो कौन है, मैं हूं या तुम हो, और जमुना पुलिन कौन सा है, वो जमुना पुलिन जैसा वो स्थान कौन सा है। कृष्ण बोले प्रियतमे, मैंने समय समय पर तुमको नारायण का रूप दिखलाया है, कहां बैठा इत्यादि में दिखलाया है, देख करके तुमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु तुम्हारी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला वो गौर सुंदर कौन है, गौर वर्ण वाला व्यक्ति कौन है, मैं नहीं कह सकता, ये कह करके वो हंसने लगे। तो राधा जी समझ गई जब हंस रहे हैं तो ये जानते हैं जरूर। फिर राधा जी बोली, ये स्वप्न विलासामृत उनका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, और महाप्रभु के अवतार की सूचना देने वाला है। राधा जी करे प्राण बल्लभ, मैं समझ गई आपके अतिरिक्त तो वह गौर वर्ण कोई नहीं सकता है, इसलिए वह गौर स्वरूप आप ही हैं, अन्यथा कोई भी मुझे मोहित नहीं कर सकता, किसी की माया नहीं मोहित कर सकती है। अनंतर कृष्ण अपनी कौस्तुभ मणि में राधिका जी को जो स्वप्न में देखा था उसमें दिखलाने लगे। सभी उसी तरह से जैसे सिनेमा में आता है वैसे उस मणि में वो सब लीलाएं देखी उन्होंने। राधिका जी अंत में देख करके बोली, बाल्यकाल में नंद बाबा के सामने सर्वज्ञ गर्ग ऋषि ने कहा था, आने वाले कलयुग के प्रथम संध्या में आपका पुत्र पीतवर्ण होकर के आएगा, गौरांग के रूप में प्रकट हुआ। गर्गाचार्य की भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा स्वप्न सत्य है, वो स्वप्न दृष्ट गौ किशोर आप ही है, दूसरा नहीं। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, प्राणेश्वरी मैं तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए तुम्हारी गौर कांति और तुम्हारे भीतर के भाव को, भाव माने क्या, मदनक के भाव इत्यादि को लेकर ग्रहण कर, तुम्हारे भावों का आस्वादन करने के लिए मैं आऊंगा। ये कली के प्रथम संध्या में, साथ ही साथ हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से राग मार्ग भक्ति का प्रचार करूंगा, और यथार्थ में अपने दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए मैं सदा महाबदान्य गौरांग रूप में अवतीर्ण होऊंगा, तुम सभी परिकरों के साथ में मेरे साथ में आएगी। निधुवन में राज वेश में सुसज्जित होकर के राधिका राज सिंहासन पर बैठी, सखियों ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया, जैसे उमराव गांव में हुआ लीला, सिंहासन पर बैठाया, और कृष्ण कोतवाल का वेश धारण कर, कोतवाल वेश धारण करके कुंज कुटी के द्वार पर रक्षा करने लगे। इसको कोई राई राज लीला कहते हैं। गौड़ीय पदकर्ताओं ने इस लीला का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया, पदकर्ताओं ने इस लीला को कैसे राधा जी सिंहासन पर बैठी हैं और ये कोतवाल बन करके कुंज की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां गौर अवतार की सूचना हुई। वहां पर एक ललिता कुंड है यहाँ सेवा कुंज में, उसी प्रकार से यहाँ निधुवन में विशाखा कुंड है। विशाखा जी की प्यास को बुझाने के लिए वहां पर ललिता जी को पिपासा करने बेणू से खोदा और यहाँ पर अपने बेणू से कुंड प्रकाश करके उस कुंड के पानी से विशाखा जी की प्यास बुझाई और सखियों की भी। और फिर वहां पर रास हुआ था निधुवन में और रात में वहां पर चीजें रख देने पर कुछ उलट पुलट जाता है, उलट फेर हो जाता है। हरिदास ठाकुर जी कौन? निम्बार्क संप्रदाय के स्वामी हरिदास। इस निधुवन के विशाखा कुंड से राधे बांके बिहारी जी ठाकुर जी को प्राप्त किया था। जैसे मदन मोहन को गोमा टीला से रूप गोस्वामी, गोविंद देव को, सनातन गोस्वामी मदन मोहन को, और इन्होंने बांके बिहारी ठाकुर को वहां से प्रकट किया। बहुत ही सुंदर गायन करते थे। एक बार महाराज अकबर, सम्राट अकबर, वेश बदल कर तानसेन के साथ में आया और उनका संगीत सुनने की इच्छा की। तानसेन ने उनको मना कर, तुम मत करना, हम व्यवस्था करा देंगे, उनका कीर्तन तुम सुनेगा। वो किसी मनुष्य को नहीं सुनाते थे, वो केवल अपने इष्ट देव को सुनाते थे। तानसेन वीणा लेकर के गायन करने लगा, बड़े सुंदर। सम्राट अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु हरिदास ने क्या गा रहा है गड़बड़, और उन्होंने वीणा ले ली। और जब गाया, वन के हिरण और ये सब वहां पर उपस्थित हो गए और जब उन्होंने बंद कर दिया तो चले गए। महाराज सम्राट अकबर ने उनको कुछ देना चाहा, खबरदार मत देना, फिर उनको मना कर दिया, तुम यहां की इनकी कोई सेवा नहीं कर सकता। इस तरह से यहां का ये विषय है। इसके बाद में आप लोग राधा श्याम सुंदर में नहीं गया? अच्छा, फिर कल जाना सब। मैं भी आऊंगा कहीं। फिर आप लोग कहां गए? राधा रमण जी में आप लोग जानते हैं कि कैसे वो शालग्राम शिला से उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रमण में प्रकटित हुए। इन राधा रमण जी में तीन विग्रह हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, तीन। किसी का पैर है, किसी का वस्त्रचल है, किसी का मुखारविंद है। बतलाया था ये रसानंद। तो ये सब विचित्र बातें हैं। वहीं पर वो भजन करते थे, उनकी भजन कुटी और समाधि भी है। और इसके बाद में हाँ, सभी ठाकुर लोग चले गए, गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा वल्लभ सब चले गए जयपुर में। और फिर जयपुर से श्रीनाथ द्वार, कहाँ कहाँ, करौली, ये सब गए, किंतु राधा रमण जी नहीं गए। मंदिर जैसा बना नहीं है और उनको गुप्त रूप में कहीं रख दिया, इसलिए वो मुसलमान लोग उनको, औरंगजेब उनको देख नहीं सका। इसके बाद आप लोग गए वहां, महाप्रभु जी का मंदिर भी है, तो वहां से आप लोग गए गोकुलानंद जी। गोकुलानंद जी नहीं है यहाँ, उनका भी विजय विग्रह ही है। तभी पृथ्वी उपग्रह को कम मत समझना, वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी की शिला और गुंजा माला थी उसी मंदिर में, अभी भी दिखलाते हैं, अभी भी दिखलाते हैं। कोई कहते हैं कि कहीं और चलिए, भागवत निवास वहां है, वन महाराज जी के हाँ वहां चली गई। और वहीं पर लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधियां हैं। वो हम स्थान हम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र है, वे लोग सभी कृपा करें। गोपीनाथ मंदिर में एक विशेष बात शायद बतलाया होगा, उनके दक्षिण भाग में बाएं भाग में जाह्नवा जी हैं, बतलाया था वहां। जाह्नवा जी हैं और दाहिने तरफ में राधा जी की एक छोटी मूर्ति और राधा जी स्वयं हैं। जाह्नवा देवी जब दर्शन करने आई तो अकेले उनको देखा, गोपीनाथ जी को। जब अप्रकट होने लगी तो अपने शिष्य से कहा, ये मेरी विग्रह है, ये वहां पर छोटी है, इस विग्रह को ले जाना और उस मंदिर में प्रतिष्ठा कर देना। ये कह करके अप्रकट हो गई, उनके शिष्यों ने वही मूर्ति जाह्नवा जी की ले आए। जब मंदिर में देने लगी तो उन लोगों ने, पुजारियों ने मना कर दिया। रात में स्वप्न हुआ, ये अनंग मंजरी हैं, इनको हमारे बाएं तरफ में बैठाओ और पहले वाली प्राचीन जो छोटी मूर्ति है और राधा जी का जो मूर्ति है वो उधर में रहे। मूर्तियां अपने आप ये सब बोलती हैं और इस प्रकार से सेवाएं ग्रहण करती हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्य है जी इनका दर्शन किया। एक्सप्लेन कर दो।
Srila Gurudev explained that by the causeless mercy of Guru and Gauranga, today, as we are performing Brajmandal Parikrama, Vrindavan Parikrama, we had the good fortune to visit Nidugan, Sri Radha Ramanji, Gopal Gata Goswami's Samadhi Mandir and Vajan Kutir, Sri Radha Gokulananda Mandir and the Samadhi of Srila Narottama Das Thakur, Lokanath Das Goswami and Srila Vishwanatha Thakur, and finally Gopinath Mandir. So first of all, went to Nidhuvan. What does Nidhuvan mean? Nidhuvan means Surata Krida, the amorous pastimes of Radha and Krishna. This is called Raha Lila, Gupta Lila, a very secret, confidential, amorous pastime. Such pastimes have been described by Srila Krishna Kaviraj Goswami Pad in his Govinda Lila Amrita, and by Srila Vishwanatha Thakur in his Krishna Bhavan Amrita, and in other very confidential shastras. So we know that between Nandagam and Varsana there is a place called Sanket. The speciality of these places, it is a setting of Radha Krishna's Nishanta Lila. But here, Nituvan, this is the place of Naisha Lila, means nighttime pastimes, and also Nishanta Lila, both. During Nishanta Lila, that means the last portion of the night, Vrinda Devi, she gives an order to the male and female parrots, to the peacocks, and to the cuckoos, that they should sing. And by their sweet singing, they should quickly awaken Radha and Krishna, who are still sleeping, so that they can return to their homes without being discovered. So those who are Rasik and Rupanuga, they always remember this Ashtakali Lila of Radha and Krishna through the medium of Naam Sankirtan. Srila Vishwanatha Thakur Thakur has described a pastime in his book, Sri Swapna Vilas Amrita. This pastime took place there in Nidhuvan. Once it happened that in the very last part of the night, Sri Vrishabhanu Nandini had a dream. When she woke up, she said to Krishna, "O Priyatam, my dearest one, I have just had the most astonishing dream. I saw that there was a very beautiful river. It was like Jamuna, but not Jamuna. And there, along the bank of that river, there were beautiful kunjas and upavan, small forests, just like Vrindavan, but it was not Vrindavan. And there I saw one, a very beautiful golden kishore, a golden youth. And he was singing, weeping. He was absorbed in bhav, transcendental emotion. And devotees were playing mridanga and karta. Sometimes he would weep. Sometimes he would become stunned. Sometimes he would faint and roll around on the earth. When he would call out, "Ha Krishna, Ha Krishna," then I looked at him and thought, "Who is that person? Is it me?" Calling out the name of Krishna with so much affection. And sometimes he would call out, "Hey Radhe, Hey Radhe." And at that time, I became confused and thought, "Krishna, is that you? And what kind, is it me or is it you? And what kind of place was that?" This golden youth was doing kirtan in such a way that everyone became completely infused with his transcendental emotions. So Radhika asked, "Is it me? Is it you? What place is this?" Sri Krishna replied, "Oh, before I showed you my form of Narayan in places like Paitagam and Sheshai, and you were not surprised. But this form, oh, I cannot say." And Krishna began to just smile. Then Radhika said, "I know that no one can bewilder me. Only one person can bewilder me in this way, and that is you. So it must be you." So Radhika said, "Once Garga Muni, he came to Nanda Maharaj and he said, 'Asangvanastrayasya,' oh, your son, he appears in different ages in different colors. So I think that my dream was not false. This must be you." So then Krishna, he explained, "Oh, in the very first part, the first portion of Kali Yuga, I will appear with your complexion in order to taste your mood through Naam Sankirtanam, and I will preach Raganuga Bhakti." So this pastime of Radha and Krishna gives an indication of the imminent descent of Sri Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Herein, Nidhuvan, there is also a throne. There's a very sweet pastime there where the Sakis of Radhika, they decorate her as an empress, as a great queen, and sit her upon the throne here. And then Krishna, he has to dress as Kotwa. Chico, please.
Like a god.
God. He takes the position of god.
It says police officer.
Constable.
Police officer.
Not chief of police, police constable, lower position.
Not constable, Kotwal. Master of police.
Chief of police.
That is, he was guard on the gate. Anyone cannot come here.
So Krishna, he had to take the position, low position of service to Radhika, standing on the gate to the Kunj and protecting her. So this sweet pastime took place in Niduvan. In Seva Kunj, there is one Kunj, that is Lalita Kunj. But in Niduvan, there is Vishakha Kunj. Once when Vishakha Sakhi was thirsty, then Krishna, to satisfy her thirst, took his flute and excavated this Kunj. Very close to Vishakha Kunj is the Prakatstali, or the place of manifestation of Sri Banki Bihari, who manifested to his dear devotee, Swami Haridas of the Nimbarka Sampradaya. Just as Sri Govinda Dev revealed himself to Sri Rupa Goswami at Gomatila, and as Madan Mohan revealed himself to Srila Sanatana Goswami, so Banki Bihari was the eternal form of Banki Bihari, was discovered there by Swami Haridas. Swami Haridas used to sing kirtan in a very astonishing way, and Emperor Akbar wanted to hear his kirtan. But his disciple Tansen told Akbar that actually Haridas, he will not do kirtan. He will not sing for any human being. He will only sing for his Ishtadev. So when Haridas used to sing, then even the deer, they would give up their shyness and come out from the forest. And when he would stop singing, the mesmerism was open, the deer would run away. So the king, he wanted to give a reward to Haridas, but he would never accept anything. Today we visited, see, Radharaman, this deity of Krishna was manifest from Shalagram Shila, worshipped by Sri Gopal Bhakta Goswami. It's understood that one who's taken darshan of Radharaman, then he's had the darshan of all three prominent deities, Sambandha, Abhideya and Prayojan, Sri Madan Mohan, Govinda and Gopinath. All the deities, most of the deities of Vrindavan, because of the attacks of Muslims, they left for Jaipur. Or Gopal Ji is in Nathdwar, Madan Mohan is in Karoli. But Radharaman Ji was hidden by his pujari, and he stayed here in Vrindavan. Afterwards, we went to the temple of Radha Gokulananda. The deities there are the Vijay Vigraha of Radha Gokulananda, Pratibhu Murti, the representatives of the original. Srila Gurudev said, one should never think that the Pratibhu Murti, the representative of the original deity, is anything less than the original deity. So there is also the Govardhan Shila and Gunjamala given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Raghunath Das Goswami. Afterwards we went to Gopinath Mandir. One very special pastime took place in this Mandir. Once Janaka Thakurani, she came and she had the darshan of Gopinath here. And then she went away. After she became apricot, her pastimes were unmanifest in
this
world.
She saw there that the deity of Radhika is very small. So she made a statue, bigger one.
And then disappeared, then disciple came.
And at the time of disappearance, she made her own statue.
Her disciple.
And also a bigger one, Radhika. And sent it to temple. And then.
So prior to her disappearance, she made a bigger of herself, smaller, and another one bigger of Srimati Radhika.
No. Both bigger.
Both bigger than who?
Radhika, at first when he went to see Gopinath, she saw that the deity of Radhika is too small. So she wanted to make it bigger one. She said she made it and also made a statue of herself and sent.
So when she disappeared, then her disciple came to Vrindavan and bought there a Vigraha, large Vigraha of Radhika and also a murti of herself. So when she bought these deities, then the pujari of Gopinath had a dream. And so the pujari refused to accept the deities, and in a dream Gopinath came to the pujari and told him that you should, this one deity is Anangamanjari and the other deity is Radhika.
She is Anangamanjari herself. So keep it in my left side. And that bigger statue and a smaller statue of Radhika should be kept in right.
Two forms of Radhika.
Yes.
Larger and smaller.
Thank you. We are hearing all these things. हम लोग सोच सुन रहे हैं किंतु नीचे की बात नहीं सुनना चाहते, कुछ साधन भजन की भी बात सुनो। यदि किसी के पुत्र को पेट में कीड़ा हो जाता है या गाय या भैंस के बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाता है, हजम नहीं होता, तो मैया नीम का रस जोर से पिला देती है। तो ऐसे ही आप सब लोग सुनते सुनते मधुर रस की बातें, बदहजम हो जाता है, तो कुछ साधन भजन की बातें भी सुनो। मैं श्रीमद्भागवत का इसीलिए आरंभ किया था। एकादश तो देखेंगे, वो भी बहुत जरूरी है, किंतु ये है नीम का पत्ता उपदेशामृत। इसलिए उपदेशामृत को सुनो और उसको पालन करने की सोचो। वी आर हियरिंग ऑल दिस मधुर रस कथा हियर इन वृंदावन। वृंदावन इटसेल्फ टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। बस हाउ टू इंटर इन वृंदावन वील हैव टू फॉलो रूप गोस्वामी उपदेशामृत एज ए नीम ऑयल बीटर थिंग। दो इज सेड बेटर बीटर बट बेटर यू शुड थिंक फर्स्ट व्हाट इज दैट फर्स्ट You should explain. Carefully you should hear and remind you, you know all these things, but remind again. Remember. And try to follow from beginning.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ब्रीफली
श्री गुरुदेव इज ऑर्डरिंग टू डिस्कस द फर्स्ट श्लोका ऑफ श्री उपदेशामृतम रिटन बाय श्री रूप गोस्वामी पाद। एज श्री गुरुदेव इज टेलिंग द necessity of hearing this subject matter, not only that we are hearing the sweet pastimes of Radha and Krishna in Braja, but also for digestion. Just like if you want to digest, you have to have something bitter in order to stimulate this digestion, so that when you are eating all the rest of the meal, it can be properly assimilated by your body. So in the same way, in the practice of bhakti, there must be a gradual step-by-step progression
It is not that one can immediately jump up to the topmost level and appreciate the prem prayojan that Chaitanya Mahaprabhu has come to give. We must hear about this prem prayojan. This is our ultimate goal. This is our sadhya. But we must also understand what is the process for attaining this ultimate goal, this sadhya. So, therefore, Srila Rupa Goswami has so mercifully given this Upadesh Amritam. Why Amritam? Because it
Amritam,
is
no Amritam, Amritam.
Amritam. Amritam. Because it is nectar. Every single aspect of this Upadesh Amritam, it is completely nectar start to finish. So it is, sometimes it is considered to be like a thunderbolt for those persons who have a devious mentality, like the Sahajiyas. They want to avoid this Upadesha Amritam. They only want to hear the pastimes, intimate, detailed pastimes of Radha and Krishna's meeting, Sambhog Leela. But they don't want to discuss the necessary steps which have to be taken. They cannot control their senses. They don't want to accept this. So, therefore, they can never attain this goal. So Srila Rupa Goswami Pad very mercifully has given to all the bhaktas of this world who want to gradually attain this great transcendental goal, he has given this step-by-step process. So the first verse is telling, Vacha Vegam Manasa Krodha Vegam Jiva Vegam Udharupasta Vegam Etan Vegan Yo Vishaheta Dhira Sargam Apimam Prithivim Sashishyat. So here Srila Rupa Goswami has described that there are six different urges which the conditioned soul in this embodied life has to learn that if he can tolerate these urges, then it will be possible for him to practice bhakti, otherwise not. First of all, he describes vacha vegam. Vegam means urge. Or as our Guru Maharaj described, he used the word pushing. Because we are pushed, we are forced to act. So the first pushing, the first urge is called vacha vegam. Vacha means speech, the urge to speak. In this conditioned state, the Badhajiv, the conditioned soul, has this tongue which is very difficult to control. It is so slippery. It is described that the tongue, it has no bone. Very slippery, very difficult to control. Just like we are praying every day, the song of Srila Bhaktivinoda Thakur before taking Mahaprasad. Sarira vidya jal jatendriya tahai kal jive fele vishaya sagari taramadhi jiva ati lobha moya sudurmati. This jiva, this tongue, it is sudurmati. Oh, very difficult to control, and lobhamoy, very greedy, very lusty. But this tongue has two functions. One is to taste, and one is to vibrate. So, vacha, vibrating transcendental sound, is the solution. If one is always engaged in chanting Hare Krishna, and speaking and discussing Krishna Katha, then the tongue becomes controlled. When the tongue is taking Mahaprasad of Krishna, then it becomes controlled. Otherwise, if someone is simply speaking unrestrictedly, this will lead to havoc. Some examples are there in the Vedic civilization history. It is pointed out that the entire battle of Mahabharata, the war of Mahabharata, this was caused by the unrestricted speech. Who's Draupadi? Draupadi had insulted Duryodhan. Yes. You have a blind father and you are like a blind son. He became so insulted by this. So in this way, the entire progression of the battle of Mahabharata and battle of Kurukshetra, which millions upon millions of people were killed, it was originally started by this. And also, Sita Devi, oh, when she was being protected by Lakshman in the forest, and Ravan came there. Prior to that, Lakshman had told her and had been ordered by Ram that he should stay there and protect her. And when the Marichi came in the form of a deer, and golden deer, and was moving here and there, and Sita Devi told that she wanted this deer, and Ram went away. But he told before that that Lakshman should guard. And when this deer was making the sounds of dying, then Sita Devi was hearing, oh, my Ram is in trouble, my Ram is in trouble. He must go, Lakshman. And Lakshman, he stuck to the order of Ram. But at that time, Sita Devi began to insult Lakshman and to tell so many things which pierced his heart. So therefore, because her tongue was speaking in this way, oh, later on, she was kidnapped by Ravan, and as a result, the entire battle ensued. So these are a couple of examples, but we know that by unrestricted speech within this world, then so much destruction comes, and our very opportunity for spiritual life will be destroyed if we do not control the vacha, vacha vegam. Vacha, the speech, is connected to manasa, to the mind. If the mind is properly controlled, if the mind is always focused on thinking about Krishna and service to Krishna, service to Vaishnavas, oh, then the speech will also come under control. And krodha, anger, if one's speech is not controlled and one's mind is not controlled, then what is the result? Anger comes, anger, krodha arises. Just like in Bhagavad Gita, Krishna is telling, jayato vishayapungsam sangasteshu pajayate sangatsam jayate kama kamat krodho avijayate. There is a progression. When the mind is absorbed in the sense objects of this world, meditating on them, then attachment develops. From attachment, then comes kam, lust, and when lust is dissatisfied, then krodha, anger, automatically arises. So these three vegams, these three urges, they are on the subtle level. And then on the physical level, then there is jiva vegam, udra upasta vegam. Then comes the control of the tongue, the physical tongue in this material body, as we've already described. But this tongue should constantly be engaged in the service of Krishna. Just like it is told, Atak Shri Krishna Namadi Na Bhavet Grayam Indriyai Sevom Mukehi Jivado Swayam Eva Smuratyada. If one begins service to Krishna, beginning with the jiva, with the tongue, oh, then gradually, he will progress in the process of bhakti, and one day Krishna will personally manifest his divine transcendental nature of his name, form, qualities, and pastimes. So in this way, jiva vegam, the tongue is connected also with the belly, because if one overeats and one does not control his tongue and is always taking foodstuffs which are not offered to Krishna, then the belly will not be controlled, and when the belly becomes overfilled and not controlled, then what is the result of that? Oh, then the genital is not controlled, and one becomes very agitated sexually, and he cannot progress on the path of bhakti. So these very basic instructions by Rupa Goswami are absolutely essential. If one does not follow the first shloka of Sri Upadeshamrita, and then the second, third, fourth, going all the way up to the eighth shloka, it will never be possible to do Braj Bhakti, to do Braj Bhajan, and to attain this great goal of Prem Bhakti, which Chaitanya Mahaprabhu has come to give. So therefore, the merciful acharyas in our line, they are engaging their disciples in regulated practice, Vaidhi Sadhana Bhakti, by which they engage their senses, mind, intelligence, 24 hours daily in the service of Krishna. And Srila Rupa Goswami says, if someone performs, if someone is dhira, very sober, and he can tolerate the urges, then pritivinsa shishyat, then he is honorable and respected by the entire world. And even he can, the whole world can become his disciple. So this is the first shloka of Sri Upadeshamritam. And if we follow the shloka, then we can progress to the second shloka.
My first request is that sannyasis should follow this totally. All sannyasis. Before giving classes to others, teaching to others, they should follow themselves, especially sannyasis. And then they are qualified to tell all these things to others. First we should try. Understand? So my request is that charity begins from home. So this charity of Upadeshamrit, you should all try to follow. First, sannyasis, because Guru has given them sannyas to follow Upadeshamrita, and then to teach others, and then brahmacharis also. Those who are in red cloth, Tyagi, they should follow all these things totally, word by word. Asham Maharaj, second shloka.
Second.
You know all these things, I know. Aap log sabhi jante hain. Kintu phir se yaad aap logon ko ho, remember karein. You should remember all these things and try to follow. Keep watching.
Second verse.
Ki pagal ekta tumhi ho pagal.
The second verse of Upadeshamrita is Atyahara Prayashascham Prajato Yamamraha Jamasandrasti Mujcham Shabdi Bhakti Manasuti. As Sripad Padmanabh Maharaj was mentioning, that it is most essential for us to not only learn these verses, but also that we should internalize these verses and make these verses part of our being. That not just mentally remembering, but these verses should be in our consciousness. So many times Srila Gurudev has explained that especially first, second, third verses, that these verses are verses of Sharanagati, and that Sharanagati is most important, not only most important, but it's imperative if we want to enter into the temple of Bhakti. So following these verses is creating a platform by which we can actually enter into our sadhana bhakti. So atyahara. This means, atyahara means over collecting. But actually it means that with the senses, these senses are coming in contact with so many sense objects. Sight, sound, form, sound, etc. So that we should not over-collect means that we should not unnecessarily dwell on the different sense objects that we're coming in contact with this material world. We could say that when we're in the Western world, that there's so many sense objects which are not favorable and which are contaminating the consciousness. But we see that even here in India, now it's becoming like the West. And one time, somebody, one devotee told me that Srila Gurudev had mentioned that when we are going, walking on the street, and we are coming in contact with so many sense objects, that the impression that looking at billboards, etc., that it lasts within for so many, many lifetimes. I forget how many lifetimes he has mentioned. So, Atihara means that while working or walking within this world, that we should be very careful to keep our mind focused on our Krishna conscious activities. That our senses, they may come in contact with different sense objects, but if our mind is absorbed in our Krishna conscious activities, then those sense objects will not act. But if our mind, which is the focal, the main sense, if that is not focused on our Krishna conscious activities, then the senses come in contact with these sense objects, it takes the senses and we get pulled away. So Atyahara, Prayashas, that means that we should not over-endeavor. So what is to over-endeavor? Over-endeavor means to perform activities which are not in accordance with our Krishna conscious activities. So really that means that one who is performing activities which is not pleasing to Guru and to Vaishnavas, then this is precious time. In other words, we may even be performing so-called devotional activities, but if it is not what Gurudev wants us to do, then that is over endeavor. So we should always be in Anugatya. Means we should always be under the guidance of bona fide Guru and performing activities according to his desire. Even if those activities do not seem to be, from one perspective, to be very high-class activities, but if it is what Gurudev wants us to do, then that is perfect activity. But somebody may be chanting so many rounds, chanting 1 lakh, 2 lakhs, etc. But if it is not what Gurudev wants that devotee to be doing at that point, then that is over-endeavor. One example is that one time, Sri Padarangi Maharaj, he was telling some devotees that he was very attached to chanting his 1 lakh of rounds every day. And because he was doing this, he was not able to do his prescribed amount of translation work. So then Srila Gurudev, he called him in. He said, oh, he said, if you want, I can arrange for you a very nice place in Radhapun, and there you can go and you can chant your 1 lakh of Harinam every day. Would you like that? And then Sri Padarangi Maharaj understood what was the situation, because he has very sharp intelligence. So then he said, no, no. He said, and without my blessings, if you go and you go there, what will be the result of your chanting your 1 lakh in Radhapun? And then Sri Padarangi Maharaj said, he didn't say anything, that Gurudev told him, zero. So this is Prayasha's term. That we may think that so many things are beneficial for our spiritual advancement, but we should always think once, twice, three times, so many times, what does Srila Gurudev want me to be doing? And then we can become free from this fault. Atyahara precious prajalpa, that we should avoid prajalpa. In the nectar instruction of Srila A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada, he explains that this prajalpa, it is like a frog that is croaking, and it's croaking in the field, and this croaking sound is just calling the snake, come and eat me, come and eat me, come and eat me. So by engaging in activities which are not Krishna conscious, or speech which is not Krishna conscious, then we're just calling the material energy to come and devour us and have us be praised to the material energy. Especially during this time of Kartik, then Srila Gurudev, he takes us to Govardhan, and there he's praying on our behalf that Kalidasa Bhav. But actually, this Srila Gurudev is praying on our behalf. But we should see that during this month of Kartik, are we actually fixed in the basic fundamental vows that we will not speak prajalpa, that we will not criticize. Not only will we not criticize, we will not hear criticism. Without this basic thing, then how we can have some real goal for this Kalidasa Bhava? Atyahara Prayasasya Prajalpa Niyamangraha. This has two divisions. One is acting mechanically, and the other is neglectfully, then when performing our different devotional activities, then rather than just performing them mindlessly, but we should understand what is the inner purpose of the activities that we're performing. And in this way, get some relishment in meditating on the importance and the inner meanings of our different activities. If we don't do that and we just perform the activities mechanically, then the result will be is that we'll start to dry up in our devotional activities, and then we'll neglect and then we'll give them up. Even if we have the great opportunity, we cannot put any price on the opportunity that we have to take shelter of personality like Srila Gurudev. But still, there is still so much on us, so much responsibility is on us, that we have to take advantage of that. We have to take that which he's offering, that he's very mercifully giving to us, and not just go through the process mechanically. Otherwise, then gradually we'll give up the process. Janasandha, that we should not associate with worldly-minded persons, means that there's two types of association. There's Vyavaharik and Paramatmik. That one is to associate in a meaningful way, in a deep way, and another way is to associate socially or superficially. So Janasandha means that we should not associate with people in a very worldly-minded people in a deep way. That we should not give our hearts. It does not mean that, oh, we cannot be sociable in the sense of offering greetings, etc. But we should be very careful not to associate with heart. There's a very nice story, but we don't have time. Jana sent us to Lillian Chan. Lillian, we should not be greedy for material things. We should not be greedy for the wealth of this material world. Understanding that all these different material facilities, ultimately, they cannot give us any real happiness. We should not be greedy for acquiring knowledge in this world. We should not be greedy for anything. Only thing we should be greedy for is how we can achieve mercy of Guru and Vaishnavas and how bhakti can come in our hearts. So, by cultivating these six things, collecting things of this world, over-collecting, being over-endeavoring for things in this world, and acting mechanically or neglectfully, associating with worldly-minded persons, and being greedy for things in this world, then these things, they will destroy whatever hope of bhakti that we have. So we should be very careful to always avoid these things and act in the positive way, which is described in the next verse.
Okay. Very good. Third slok, Ban Maharaj. Third slok.
Hindi to?
No, English.
La bolo. Sankhepe bolbo, bishi. No, tomar je ichha. Are we can to the bolo?
गुरुदेव कृपा करके मुझे आदेश दिए हैं श्री अरुप गोस्वामी आप विरचित उभर सामग्री के तृतीय श्लोक के कोष प्रकाश डालने के लिए उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सभी सर्वी भक्ति प्रसिद्ध जी इस श्लोक में श्री महाराज जी भजन रहस्य ग्रंथ में टीका में इतनी सुंदर प्रांजल भाषा में वर्णन करते हैं उत्साह भक्तिविनोद ठाकुर इस कीर्तन में वर्णन करते हैं भजन उत्साह सदा सर्वदा साधक भजन में उत्साह रखे भजन उत्साह प्रेम लाभे धैर्य धन निश्चय और यह सब में दृढ़ रहे जब मैं भजन कर रहा हूं गुरु पाद पद्म मुझे अवश्य ही मुझे अभिष्ट वस्तु के प्राप्त कराएंगे इसलिए उत्साह भजन यानी
सेवा वृत्ति गुरु और शिव की किस प्रकार सेवा और शिव के द्वारा उनके चित्त के किस प्रकार मैं द्रवित कर दूं, यही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए उत्साह निश्चय मैं गुरु बात कर लू परफेक्ट और ये मंत्र भी परफेक्ट है, इसलिए अति अवश्य ही एक दिन ही मैं अपने लक्ष्य स्थान पर मैं पहुंच जाऊंगा। इसमें निश्चय दृढ़ जा यद्यपि अपने लक्ष्य स्थल पर अभी पहुंच नहीं पा रहा हूं, यह तक भी गुरु महाराज जी यह भी कहते हैं अपने जो इंद्रियों को मैं मजबूत कर नहीं पा रहा हूं, जैसे अभी पूर्व भक्तों ने अपने माच बेगम मनुष्य क्रोध बेगम जिहा बेगम गर्भस्थ बेगम एतम बेगम जो विश्वदेन सर्वम बीमम प्रतिदिन सशिष्टा साधक पहले स्टेज में यह समस्त बेगम के जो है दमन कर नहीं पाते, इसलिए कभी निरुत्सुक होना नहीं चाहिए। तत्व कर्म अर्थात भजन करते करते ये समस्त अनर्थ आदि धीरे धीरे दूरीभूत होगा। तत्व कर्म उत्साह निष्ठा धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तना तत्व कर्म यानी भक्ति अनुकूलमयी चेष्टा। भक्ति राज्य में दो प्रकार की व्यवस्था दी गई, एक अनुकूलमयी चेष्टा के ग्रहण और एक प्रतिकूल जो वस्तु जो उसको त्याग देना। भक्त के जितने प्रकार के अनुकूल वस्तु उसके अपना अतः उसके अनुसार भजन करना साधु सेवा गुरु सेवा मंत्र जप ध्यान ये समस्त अनुकूलमयी कृष्ण अनुकूलमयी विश्व के गुरु महागुरु जी के वैष्णव के उनके अनुकूलमयी भावना को देख करके सेवा करना। प्रतिकूल जितने प्रकार के प्रतिकूलता है अत्याहार प्रजंपन यमाग्रह ये समस्त को परित्याग देना ही शास्त्र के विधान है। इसलिए भक्ति राज्य में दो ही बताते हैं अनुकूल अनुकूल ग्रहण और प्रतिकूल विवर्जनम रक्षति और तत्व कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा जितने प्रकार के संग भजन किए और संगत त्यागा यानी असत संग को त्याग देने के लिए शास्त्र में कह दी विश्व के तीन प्रकार के संग को त्याग देने के लिए कह गए एक साथ एक त्रिसंग त्रिसंग संग और कृष्ण अभक्त अर्थात जो स्त्री त्रिसंग करते हैं अर्थात अवैध रूप स्त्रियों के साथ गणित कर्म आदि करते हैं और जो स्त्री की संग आदि करते हैं उसके भी शास्त्र कहते हैं उसके संग कभी ना करें और अभक्त यानी मायावाद दोष के द्वारा जिसको चित्त दूषित हो गया तदापि उनके संग आदि ना करें। मायावाद दोष का हृदय वशिलो चित्त अहर इस प्रकार शास्त्र में कहते हैं जो मायावाद के द्वारा जिसको चित्त दूषित हो गया उसी कभी संग नहीं। तत्व कर्म प्रवर्तना सतो वृत्ति जैसे हमारे गुरु वर्ग आचार्य रूप सनातन और हमारे गुरु वर्ग जिस प्रकार अपने जीवन प्रणाली जीवन जैसे निर्वाह उसके अनुसार करना पड़ेगा। जैसे रूप सनातन कैसे अत्यंत वैराग्य के साथ भजन साधना करते कहा विप्र करे स्थूल माधुपुरी माधुर के द्वारा ही उन्होंने जीवन यापन आदि करते थे। ये प्रसिद्ध महाराज जी इस संदर्भ में लिखते हैं जे त्यागों की कभी संचय ना करें त्यागी जितने भी जो कुछ भी करें सब गुरु के चरण में अर्पित कर दें और गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन रक्षा के लिए भक्त वस्त्र आदि अथवा गुरु की प्रदत्त वस्तु आदि ग्रहण करें जैसे रूप सनातन आदि ब्रज में रह करके भजन साधन करें। इसलिए साधु वृत्ति और उनके और एक साधु वृत्ति है उनके जो अंतर्निहित जो भाव वह समस्त वृत्ति के चलना वृत्ति में रह करके भजन करना है। जिस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर रघुनाथ दास जी के आदेश दिया मने वाले सिद्ध जगा करिया भवन रात्रि दिने राधा कृष्णे करवे सेवन यह साधु वृत्ति है। साधु जितने ही अपने भजन राज्य में अग्रसर होते हैं बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार अपने भाव को आगे बढ़ाते हैं और उसी प्रकार गुरु रघुनाथ के अनुरक्त उनके भजन प्रणाली उनके बहिर और अंत दोनों भाव के लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ना है। मणि मणि सिद्ध देव करिया भावन रात्रि दिने राधा कृष्ण बारह सेवन उसी प्रकार जितने साधक आदि सत्ता तत्व साधु सत्व भजन क्रिया अनर्थ निष्ठ रुचि आसक्ति भाव जितने पहुंचते जाते हैं उतने परिमाण हमारे पूर्व पूर्व आचार्य के अंतर और बाहर दोनों प्रणाली को लेकर के धीरे धीरे आगे चलते हैं। सारी भक्ति प्रसिद्ध प्रति इस प्रकाश के द्वारा छह प्रकार के उदाहरण देते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद इस रूप में अवतरण करते हैं कि हम लोग इस प्रकार भक्ति राज्य में आगे भी बढ़ चुके और अपने अभिष्ट वस्तु को हम लोग प्राप्त करेंगे। आज हम लोग मैं अपने
कल सवेरे हरि कथा के बाद में सेवा कुंज, हाँ यहीं से इमली तला हो करके सेवा कुंज और मठ में नहीं, मठ में तो जाते हैं, यहाँ से इमली तला महाप्रभु जी का स्थान और कृष्ण लीला का स्थान इमली तला और इमली तला के बाद में सेवा कुंज और वहां से निकल करके राधा दामोदर जी का भी नहीं हुआ ना, राधा दामोदर जी फिर श्याम सुंदर यदि खुला हो और इसके बाद में श्रृंगार भट्ट और जितना हो सके कर दें। उस दिन बेलबन से आते समय मैं नहीं कर दूँ तो कल जहां तक हो सके ये कर लेना, फिर परसों हम लोग दूसरी जगह जाए। टुमारो वी विल गो टू इमली तला द प्लेस ऑफ कृष्णा आल्सो एंड राधा रानी एंड द प्लेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ही यूज टू कम फ्रॉम अक्रूर घाट टू हियर एंड टू डू भजन and in the evening he used to return back. At that time it was very dangerous forest, no temple, nothing was there. And then Seva Kunja. And from Seva Kunja you can go to Radha Damodaram and from Radha Damodar, Shyam Sundar and others as you can. Gaur Premanande.